اب ہم چلیں گے اپنے سبق کی پہلی آیت پہ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل, یہ ہیں وہ رسول. کون سے رسول؟ جن کے تذکرے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں. کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ساتھ؟ فضلنا بعضہم علی بعض, ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. کیسے فضیلت دے دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں اب ہمیں مزید باتیں بتا رہے ہیں کہ رسول سارے میرے ہی ہیں, میں نے ہی بھیجے تھے. کیوں بھیجے تھے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے. لیکن ان رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خوبیاں دیں. کسی کو ایک آنر دے کے اس میں آگے کر دیا, کسی کو دوسرا آنر دے دیا. جیسے مختلف پھول ہوتے ہیں نا, گلاب بھی ہے, چمبیلی بھی ہے, چمپا بھی ہے, موتیا بھی ہے, ہے سارے پھول. پھولوں کا کام ہوتا ہے خوشبو دینا. نبی کے نام کے سے پھول لکھ لیجئے. نبی یا رسول, پروفیٹس, جو بھی ہے, میسنجرز, کوئی بھی نام دے دیں, یہ پھول ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے خوشبو بکھیرنا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھول اپنے لیے نہیں جیتا. کوئی پھول اپنی خوشبو خود نہیں صرف سونگتا. جہاں ایک پھول رکھ دیا جائے نا, وہاں دور دور تک خوشبو جانے لگتی ہے. تو نبی انسانوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو اپنی فطرت سلیمہ پہ قائم رہتے ہیں. بشری خطاؤں سے اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے, اور ایسا انسان حقیقت میں پھر ایک پھول بن جاتا ہے, نیکیوں کا پھول, خوشبو کا پھول. اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے کہ تم دنیا میں وہ انسان جو اپنی خوشبو ختم کر چکے, جنہوں نے کانٹے اتنے زیادہ بکھیر لیے اپنے ارد گرد گناہوں کے, نافرمانیوں کے, تم جاؤ اور ان کو اللہ کا پیغام دے دو. اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء آئے. ایک لفظ ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی. فرق دیکھ لیجئے. تل کر رسول, یہاں لفظ ہے رسول. رسول کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کو کتاب بھی ملے, شریعت بھی ملے, اور وہ اس کی تبلیغ کرے. اس کے برعکس لفظ آتا ہے نبی. نبی کے لیے کتاب کا ملنا یا نئی شریعت کا ملنا لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں, اب ایک جملہ لکھ لیں تو بعد میں آپ اس میں اپنی ساری خود بخود چیزیں فٹ کر لیں گے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نسبت دیے بغیر ہم رسولوں کو اگر پیش کر سکے تو کس رنگ میں کریں گے, کہ جیسے ایک ماں کو اپنے سارے بچے پیارے ہوتے ہیں نا, اللہ کو اپنے سارے رسول پیارے ہوتے ہیں. تل کر رسول فضلنا بعضہم علی بعض, یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. کیسے دی؟ اب یہ فضیلت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. 1 2 3 کرنا چاہیں, اے بھی کر لیں تو بھی, جو بھی چاہیں, ہائی لائٹ کر لیں ایک چیز کو ایک رنگ سے تو بھی ٹھیک ہے. پہلی چیز, منہم من کلم اللہ, بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں سے کلام کیا. کیسے کیا تھا؟ براہ راست کیا تھا. کون ہے اس میں؟ سب سے پہلے جو اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں نام آتا ہے نا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے, کیونکہ ان کا لقب بھی کیا ہے؟ کلیم اللہ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کلیم اللہ نہیں تھے. اللہ نے صرف ان سے نہیں کلام کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کیا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کلام ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کلام کیا, لیکن ایک نبی کے ساتھ اس کو زیادہ واضح کر دیا. ٹھیک ہے, تو کچھ سے کلام کیا. دوسرا, ورفع بعضہم درجات, اور کچھ وہ ہیں جن کے درجے بلند کیے. اب یہ دوسری خبر دی جا رہی ہے. درجوں کی بلندی دو طرح سے ہے. ایک تو ہے جس طرح ہم اردو میں محاورتن بولتے ہیں, درجوں کا بلند ہو جانا. ٹھیک ہے, مثلا کسی کے رینک کو بلند کرنا. اس میں دیکھیں تو مختلف انبیاء کرام کے مختلف درجے ہیں. نبوت کی کڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوورال مقام سب سے اوپر ہے, یہ لکھ لیں. क्योंकि यहाँ एक और साथ ही सवाल भी तो ज़हनों में आता है जिसके साथ लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और वो क्या है कि क्या हमारे नबी ज़्यादा हैं, बड़े हैं या दूसरे हैं। और ऐसे वाक़यात हुए भी थे, नबी सल्लम की ज़िंदगी में भी ऐसे हुए थे कि एक मुसलमान और यहूदी का झगड़ा हो गया। यहूदी ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बेहतर थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक फॉलोअर उठा, उसने हज़रत ईसा की तारीफ़ की, तो जो मुसलमान था उसने गुस्से में आके कहा नहीं कि मेरा नबी ज़्यादा अच्छा था, तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। ओवरऑल नबी सल्लम की बुनियादी तौर पे अहमियत मौजूद है, अल्लाह ताला ने उनको मौजज़े दिए, लेकिन आप देखिए कि इनफरादी तौर पे कुछ ऐसे मौजज़ात थे जो अल्लाह के नबी को नहीं मिले। मसलन आप देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे, नबी सल्लम नहीं कर पाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक हाथ को अल्लाह ताला ने यद बैज़ा बनाकर चमकता हुआ कर दिया, ठीक है, जबकि नबी सल्लम के पास ऐसा कोई मौजज़ा नहीं था। तो यही बात यहाँ बता दी कि कुछ के दर्जे बुलंद कर दिए। अच्छा, ये दर्जे कौन से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र में आसमान पे बुलाए गए थे, तो आपने सातों आसमानों पे मुख्तलिफ अम्बिया को देखा था, तो ये दर्जे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले आसमान पे देखा था, और सबसे ऊपर वाले पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा था। इनके बीच में सबके दर्जे थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानियों की वजह से बहुत ऊंचे दर्जों पे पहुंच गए। तो रफा बादहुम दरजातिन, बास के दर्जे बुलंद हो गए, इनको अल्लाह ताला ने ऊपर कर दिया। अब ये तो थी रिफत, वो जो एक महावरतन है, लेकिन एक और भी बुलंदी है जो हकीकी तौर पे बुलंदी दी गई, वो किसको दी गई? एक तो देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आज भी हमारे ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह के साथ आसमान पे बुलाया हुआ है। अब हम सारे इंसान इस ज़मीन के तख्ते पे चलते फिर रहे हैं ना, ज़िंदगी में, मरने की बात नहीं है, ज़िंदगी की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे, तो एक ज़ाहरी बुलंदी, अगर आप जैसे कह सके कि हाइट के सेंस में उनकी तरफ इशारा भी जाता है। इसी तरह एक नबी थे जिन्होंने ये ख्वाहिश की थी कि अल्लाह मेरी रूह आसमान पे निकले, मलकुल मौत मेरी रूह ऊपर ले जाए। तो अल्लाह ताला ने उनको भी, हज़रत इलियास के बारे में ये बात आती है कि ज़िंदगी की हालत में उनको फरिश्ता ऊपर ले गया और वहाँ जाके उनकी जान निकली। तो बहरहाल ये कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह ताला जो बात कहते हैं वो इससे आगे आ रही है। तीसरा, वातैना इस्सा इब्ने मरियम अल-बैयिनात, और हमने ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियाँ दे दी, और वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, हमने रूहुल कुदस के साथ उनकी मदद की, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके साथ रहते थे। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उनके उन मुजज़ात का तذکرہ है जो उनकी ज़िंदगी के साथ थी, और आगे इंशाल्लाह सूरह आल इमरान में इसमें बहुत सी बात होनी है। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से अंधों को बीना कर लेते थे, हाथ फेरते थे, आंखें इनकी ठीक हो जाती थी। कोढ़ी का मरीज, लेप्रसी, उसको हाथ फेरते वो ठीक हो जाता, मुर्दों को जिंदा कर लेते, घरों में लोग क्या छोड़ के आए हैं खबर दे देते। खुद इनकी अपनी पैदाइश एक मौजाना तरीके पे हुई थी, इनकी वफात भी एक अजीब तरीके से है, वापस दुनिया में आएंगे। तो हज़रत ईसा के साथ कुछ इस किस्म के बहुत सारे बात हैं। अब ये बात करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल बात के वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के बाद लोग आपस में झगड़ा ना करते, क्योंकि मिन बादि मा जातहुमुल बय्यिनात, जबकि इनके पास वाज़े अहकाम आ चुके थे। यानी अल्लाह ने किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ दिया, तो उनके बाद वाले लोगों के लिए क्या ज़रूरी था कि वो इन बातों में झगड़े ना कि किसका नबी बड़ा है, किसका बड़ा है, कौन किस तरह से था, बल्कि उसको मानते। लेकिन हुआ क्या? वलाकिन इख्तलफू, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया। कैसे? नबुवत में इख्तलाफ किया। यहाँ वो झगड़े की बात है कि जब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों को मुख्तलिफ खूबियाँ दी, तो हम सबका क्या फ़र्ज़ है? देखिए, बात तो यहाँ है नबियों की, पहले उनकी समझ लें, उसी से फिर चारों आइमाए कराम, और उसके बाद आज के उस्ताद, मदरसे, इदारे, ये सारी सब डिवीजन आप इसे एक असूल की बुनियाद पे कर लीजिए। नबियों की बात करेंगे ना, तो दो लफ्ज़ लिखिए, एक है तफदील, जैसे यहाँ लफ्ज़ है ना फद्दला, तफजील बैन अल-अंबिया, ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ लिखिए तफरीक बैन अल-अंबिया। तफदील क्या है? हमारा ईमान है कि हर नबी की मुख्तलिफ खूबी थी, ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको रियलाइज करें बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ खूबियों को मानते हैं, आपका एक बच्चा जो है वो नाइस बहुत है, बात बड़ी खूबसूरत करता है, आपके साथ बहुत नाइस है, लेकिन दूसरा बच्चा एक्टिव बहुत है, वो भाग भाग के काम करता है ना, फर्क है ना। तो ये हकीकत है कि इंसानों के बीच में फर्क तो है, लेकिन तफरीक बैनुल अंबिया क्या है कि एक नबी को मानेंगे और दूसरों को नहीं मानेंगे, ये कुफर है। मैं बोल देती हूँ दोबारा, आप फिर लिख लीजिए कि तफदील बैनुल अंबिया, नबियों में से एक का दर्जा बुलंद दूसरे का काम, ये हकीकत है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने बच्चों को देख के समझ जाती हैं कि उनके अंदर मुख्तलिफ खूबियां हैं, लेकिन क्या कोई माँ अपने बच्चे की किसी खूबी के कम होने की वजह से उसको छोड़ देती है? नहीं छोड़ती। तो तफरीक बैन रसूल कुफर है। ये कहना कि हम किसी रसूल को मानेंगे किसी को नहीं, मसलन कैसे, आप सबसे पुराने मजहब पे आ जाइए, यहूद। यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से ईसा के पहले पहले सब नबियों को मानते हैं कि वो नबी थे, ठीक है, लेकिन वो हजरत ईसा को नहीं मानते। नऊजु बिल्ला वलदुज़्ज़िना कह के ही तो उनको कत्ल करने की कोशिश की थी, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह के यहूद ने ही हजरत ईसा के कत्ल की कोशिश की थी। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तासुब की वजह से नहीं माना, अब एक ग्रुप हो गया, मूसा को माने, ईसा और मोहम्मद सल्लम को नहीं माने। आगे चलिए, ईसाई आगे दुनिया में क्रिश्चियंस, हजरत मूसा को भी मानते हैं, वो पिछले सारे नबियों को मानते हैं और ईसा को भी मानते हैं, बिलफर्ज वो नबी ही मान लें, अभी बेटे का तसव्वुर ना भी लाएं, लेकिन उनका जुर्म क्या है कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं माना, ठीक है। आप चलिए, आप तीसरे मजहब पे, मुसलमान किसको मानता है, ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, सबको मानते हैं, कद फद्दलना बादहुम अला बादिन, आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको मानते हैं। ये कि यहाँ बताया गया है कि किसी एक नबी का इनकार कर देना, दूसरे नबी का मान लेना अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं। कोई माँ पसंद करती है कि आप उसके एक बच्चे को तो प्यार करें दूसरे को ना करें, एक को तो प्यार करें दूसरे को मारें, एक को गालियां दें डांटे, नहीं कर सकती ना। तो बिल्कुल यही बात है, लेकिन याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह आपका अपना मुकाम सबके अंदर यकता है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि नबी सल्लम की कोई शान नहीं, हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम को 6 ऐसी चीज़ें दी गई थी जो पिछले अम्बिया को नहीं दी गई, जिसमें चंद चीज़ों में आप, पहली बात तो ये कि आपसे दीन की तकमील करवाई गई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आप आखिरी नबी थे। फिर आप देखिए कि दुनिया में आपसे फतुहात का दरवाज़ा खुलवाया गया, बाकी नबियों ने इस तरह बाद में आके इलाकों को कंकर नहीं किया, नबी सल्लम ने किया। फिर सूरह फतह के बिल्कुल शुरू में आएगा, लियग़फिरुल्लाहु मिन ज़म्बिक, कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर दे, मा तकद्दम व तअख़्खुर, तो अल्लाह के नबी के अगले पिछले गुनाह माफ़ कराए गए। फिर इसी तरह दुनिया में एक और आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी और वो क्या कि मेराज करवाई, बाकी अम्बिया कराम को ये नहीं किया। फिर इसी तरह नबी सल्लम के लिए माल गनीमत हलाल था, पहले अम्बिया उस माल को जला देते थे, वॉर बूटी जिसको बोलते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि पूरी ज़मीन मुसल्ला है उम्मत मुस्लिमा के लिए, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि बाकी नबी सिर्फ अपने इबादत गाहों में ही नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। फिर इसी तरह आपको जवामिल कलिम दिए गए, थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कर लेते थे, छोटी छोटी हदीसें हैं, तहादु तहाबु, तोहफे दो मोहब्बत बढ़ेगी, इस तरह का आपका कलाम था। इसी तरह कुछ मुकाम अल्लाह ताला अपने नबी को आखिरत में देगा जो बाकियों के लिए नहीं है, वो भी नोट कर लें। सबसे पहली बात है कि आखिरत में आपको मुकाम महमूद मिलेगा, ये एक जगह नहीं है बल्कि ये एक इज्जत का मुकाम है, जहाँ आएगी बात आपको फिर बताएंगे। जन्नत में सबसे पहले आपको दाखिल किया जाएगा, शिफात कुबरा का आपको अल्लाह ताला मौका देंगे, यानी हिसाब ही नहीं शुरू हो रहा, अल्लाह के नबी की फरमाइश से हिसाब शुरू होगा। फिर वसीले का मुकाम आपको जन्नत में मिलेगा जो सबसे बुलंद जगह है। फिर इसी तरह आपके लिए वहाँ हौज़े कौसर होगा, जिसका पानी एक दफ़ा पी लिया तो प्यास ही नहीं लगेगी। तो अब आप देखिए इतनी खूबियाँ, इसके बावजूद अल्लाह के नबी की इनके सारी और हम्बलनेस क्या था, आप कहा करते थे कि मुझे दूसरे नबियों के ऊपर प्रेफरेंस ना दिया करो और मुझे उस तरह ना बढ़ाओ चढ़ाओ जैसे नसारा ने हजरत ईसा को बढ़ा दिया। आज आप जरा नातों के चंद बोल शऊर से सुन के देखें तो उसमें सारा शिर्क भर जाता है, तो कहने की बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ने सबको मुख्तलिफ दर्जे दे दिए, बाद वाले लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन लोग इसमें झगड़ते रहते हैं। वलाकिन अल्लाहु यफ़लु मा युरीद, अल्लाह ताला खूब जानता है जो लोग करते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि वो अल्लाह ताला नौस बिला मजबूर है कुल है कि उनको लड़ने से रोक नहीं सकता? नहीं, मतलब ये नहीं है। लोग जब लड़ते हैं तो अल्लाह उनको रोक सकता है, लेकिन अल्लाह जबरदस्ती नहीं रोकता। अब देखिए, यहाँ बात है नबियों की, बिल्कुल यही बात बाद में आयमाए कराम के साथ हुई। मेरे और आपके लिए तो अब नबूवत का झगड़ा नहीं है ना, मुसलमान होने के नाते हम सारे नबियों को मानते हैं अपने पे आ जाए। आज उम्मत चार आयमाए कराम के नाम लेके झगड़ती है। कोई कहता है कि मैं हनफी हूँ, कोई शाफी, कोई मालिकी और कोई हम्बली कहलाते हैं। चारों इमाम भी अपने दौर में ऐसे ही थे कि जैसे चार फूल थे। हर एक ने अपने हालात, अपनी इस्तेदात, अपनी हिम्मत के मुताबिक दीन की खिदमत की, किताबें लिखी, और चारों में से चारों इमाम ये कह कर गए दुनिया से कि हमारी कोई बात अगर हदीस के खिलाफ दिखे, हो सकता है 100 दफ़ा हो सकता है, क्योंकि हम सब बशर हैं। इस पे पूरा दर्स मौजूद है कि हज़रत उमर कई मसलों में बहस कर रहे थे कि मैंने तो ये हदीस कभी सुनी नहीं, बाद में हदीस मिली तो फिर उन्होंने रजू कर लिया। तो जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले लोग थे, वो ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा इल्म मुकम्मल है, तो इतने 100 साल बाद का एक आलिम कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, और उन्होंने किया भी नहीं। बाद में लोग आपस में झगड़ते हैं, यही चीज़ आज उलमाए कराम के बीच में फूट डलवाती है। असल होता पता क्या कि जिनको फ़ायदा मिलता है ना उन दीनदारों से, बस वो उनको एग्जेजरेट कर देते हैं। जितने भी फिरके आज बटे ना, शख्सियात के नाम पे बटे। कुछ लोगों ने एक शख्सियत को हाईलाइट करके उनको ऊपर कर दिया, दूसरों ने दूसरी को ले लिया। मेरा और आपका काम क्या है इस वक्त इन आयतों को पढ़ने के बाद, कि हमें इज्जत सबकी करनी है, रिस्पेक्ट सबकी करनी है। जिससे जो फ़ायदा हम ले सकते हैं वो ले लीजिए, जिसके पास कोई चीज़ नहीं दूसरे से ले ले। ये वही काम करना पड़ेगा हमें जो हम दुनिया की चीज़ों में कर रहे हैं। आप टेस्को से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, जो चीज़ आपको वहाँ अच्छी मिलती है ले लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको सेम्सबरी से अच्छी लगती हैं, वहाँ से ले लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं लड़ो नहीं। असल ये जो मजहबी बहसें होती है ना, ये दीन का इमेज लूज कर देती हैं। तो यहाँ इस आयत का तस्करा कर देना असल में आगे बहुत सारी चीज़ों की तरफ रास्ता दिखाना है।
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
जो अगली आयत शुरू हो रही है उसमें अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत कॉल है, जिसको आप इस नाते से देख लीजिए कि जब भी हमने पीछे से बात की आयते बिर से कि दीन के मुख्तलिफ एंगल हैं और उनके अंदर एक चीज़ इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये कभी नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई काम हो और पैसे की जरूरत ना हो, एक घर भी नहीं बनता। तो जब दीन के कामों की बात आती है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पैसा न लगे। जब कोई ऐसी बात है, पीछे नबियों की बात आ रही है ना, आप नबियों के तनाजर से इस अगली आयत को सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि जब नबियों ने दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब करना चाहा तो उन्होंने भी लोगों से कहा कि मन अंसारी इल्लाह। सूरह सफ़ की आयत में आप पढ़ेंगे, हज़रत ईसा ने कहा कौन है तुम में से जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार है? सेम इसी तरह जब नबी सल्लम को दीन के लिए जरूरत पड़ती थी तो आप भी कहते थे कि कौन है जो आज अल्लाह के साथ सौदा करे, कौन है जो इस काम में मदद करे, जो हम सारी सीरत में कहानियां पढ़ते हैं। तो यहां अब गलबाए दीन की कोशिशें लिख ले। हर वो बंदा जो दिल में ये ख्वाहिश रखता है ना कि दुनिया में इस्लाम गालिब हो, मुसलमान इज्जत पाए, मुसलमान तरक्की करे, तो उसको इस्लाम के गलबे के लिए जान, माल, वक्त, सेहत, हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, ए लोगो, ए मुसलमानों, ए ईमान वालो, जो कुछ मालो मता हमने तुमको दे रखा है इसमें से खर्च करो। लफ्ज रज़क़नाकुम पे गौर कीजिएगा, पहले ही सांस दिलवा दिया तुम्हारा नहीं है, हमने तुमको दिया है, और अपनी ही दी हुई चीज अगर कोई वापस मांगे तो क्या कोई बुरा मानेगा? आप बताइए कि कभी कोई किसी को चीज दे और बाद में उसी से थोड़ी देर के लिए बोरो करे तो शर्म से बंदा झुकता जाता है कि कोई बात नहीं आप ले लीजिए। कहा, हम तुमको देते हैं, खर्च करो। कब तक? मिन कबली, इससे पहले, अय्यातिया यौमुल्ला बैयुनफी, कि तुम्हारे पास वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख नहीं, वला खुल्लतुन, कोई गहरी दोस्ती नहीं होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा, वला शफाअतुन, और किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, वल काफिरूना हुमुज़्ज़ालिमून, और याद रखो इस हकीकत से मुनकिर जो लोग हैं यकीनन वही जालिम है। यहाँ पे ईमान वालों को खर्च की दावत दी गई है। नबियों का विशन पूरा ही तब होगा जब उसके अंदर माल लगेगा। अब आप देखिए कि इस आयत को अगर हम गौर से देखें तो अनफिकू के लफ्ज में अल्लाह सुबहाना ताला ने एक बहुत बड़ी हकीकत छुपा दी कि तुमको खर्च करना पड़ेगा। क्या अल्लाह ताला खुद नहीं दीन के ऊपर खर्च कर सकता? एक क्वेश्चन है हमारे जहन में, और सूरज यासीन में लोगों ने कहा भी कि हम उन पे क्यों खर्च करें जिन पे अल्लाह चाहता तो खुद कर लेता। तो अल्लाह ताला इसका हमें जवाब देता है, यहाँ थोड़ी सी बात समझ लीजिए, दो तीन बातें फिर इंशाल्लाह आप इसके आगे चलेंगे तो सारी बात समझ आएगी। जब तक इंसान किसी चीज पर खर्च नहीं करता उसकी कदर नहीं आती। नंबर एक, किसी चीज पर खर्च करना असल में उसकी अहमियत का एहसास होने की दलील है। माँ को भी बच्चे की कदर ना होती अगर बच्चा इतनी दर्दों के बाद पैदा ना किया जाता, उसके लिए कितनी मेहनत करती है क्योंकि उसको उसकी कदर आती है। अपनी चीज अपनी होती है। अब हुआ क्या कि जो दीन हमें माँ के पेट से मिल गया हमें उसकी कदर नहीं होती क्योंकि हमने जाहिरन वो चीज़ नहीं की, लेकिन जब शऊर के साथ एक इंसान अल्लाह की तरफ आता है तो उसको ये पता चल जाता है कि अल्लाह का दीन सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप खुद देख सकते हैं इस बारे में कि आप एक गाड़ी कहीं खड़ी कर सकते हैं बगैर कॉइन्स डाले, खड़ा करने देता है कोई आपको इस शहर में? आपके अपने घर के दरवाजे के बाहर भी आप खड़ी करें तो भी आपको जगह खरीदनी पड़ती है, यानी उन्होंने बता दिया कि ये घर के अंदर की जगह आपकी है लेकिन सड़क पे अगर गाड़ी है तो ये हमारी है, कहते हैं ना। आप इस मुल्क को ही ले लें, किसी भी मुल्क को ले लीजिए, ये नहीं हो सकता कि वो आपको बिल्कुल इसी तरह पे छोड़ दें। बिल्कुल इन आयतों में यही पैगाम मिल गया कि अल्लाह की मार्फत और रसूल की मार्फत खर्च की बुनियाद पर मिलती है। आप जिस पे जितना खर्च करते जाएंगे वो आपको उतना प्यारा होता जाएगा। आजमा के देख ले, कितने लाड़ से माँ बाप अपने बच्चे पे खर्च करते हैं। वो मासूम बेजुबान कुछ नहीं मांगते आपसे लेकिन अपने शौक से कभी आप झुंझुने ला रहे हैं, कभी मैचिंग कपड़े ला रहे हैं, कभी उनकी क्रेप्स ला रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है ना। लेकिन हमारा आज का अलमिया क्या है कि आज हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन दीन पर खर्च करना तो हमारी लिस्टों में नहीं रहा। हम तो बल्कि ऑपोजिट सोचते हैं कि मस्जिद वाले हमसे पैसे मांगते हैं कि ये किताब बांट रहे हैं इसके पैसे दे दो, हम कहते रखो अपने पास। हमने दीन को मुफ्त किया, सस्ता किया और बिल्कुल लोगों के लिए बेकार कर दिया। ये बात मैंने की है तो मैं अपने बड़े दर्द के साथ आपको बात बताऊंगी कि जो बातें जो मस्जिदों में हम कुरानों का हाल करते हैं कभी देखा है आपने? यूं लोग पढ़ के छोड़ के जाते हैं वहां जैसे कोई माले मुफ्त दिले बेरहम, और फटे हुए सफ़े अंदर मोड़े हुए, पैसे जो कोई नहीं है। हम ऐसी कई मस्जिदों को जानती हूँ, मैं कहती हूँ अब लिख के लगा दें कि कोई यहाँ से कुरान नहीं ले सकता, ये लाइब्रेरी नहीं है, अपना कुरान लाएं पढ़ के बच्चे साथ ले जाएं। कहती नहीं फिर बुरा लगता है। अभी क्या बुरा लगता है? अब आप इन 100 कुरानों का क्या करेंगे जो आपने डब्बों में डाल के रखे हुए हैं और कोई ले ही नहीं रहा, और आपको बेदबी का डर है कि ये ज़ाया ना हो जाए। आज याद रखिए कि दीन क्यों नहीं फैल रहा, कि आज मुसलमानों का मिशन नहीं रहा उसके लिए खर्च करना। हर चीज़ पे खर्च करता है इंसान, उस पे नहीं करता। पिकनिक पे खर्च, इल्म पे सफ़र पे खर्च नहीं है। हम अपने वार्डरोब्स के कपड़ों को देख लें, क्या उतनी ही किताबें हमारी शेल्फों पे हैं? आज ग्रोसरी का खर्च देख लें, दूध पे खर्च करते हैं, लेकिन हम इल्म की दौलत पे खर्च नहीं करते या दीन के नाम पे। आप देखिए, वही बात कहूंगी ना दोबारा आपको, कि जंगें तो अभी नहीं लगी हुई, लगी भी हैं तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन आज दीन की बात है, इसकी वजह यह कि हम खर्च नहीं करते, तो अल्लाह मुसलमानों को इसका एहसास दिला रहा है। इमाम बुखारी के बारे में आपने सुना मैं कुछ? मैं सिर्फ अगर आपको उनके दो तीन वाक्य यहाँ सुना दूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय तो बहुत करें, एहसास भी बहुत जागे, लेकिन वक्त ऊपर हो जाए। कितना बड़ा नाम है कि आप कह सकते हैं कि उम्मतियों में जिस किताब ने सबसे ज्यादा फायदा दिया ना, जिसकी किताब ने, वो इमाम बुखारी के। यानी कुरान तो अल्लाह ने भेज दिया ना, लेकिन नबी के हदीसों को पायल अप करने वाली शख्सियत इमाम बुखारी थे। और आपको पता है कि जब वो इल्म के सफर के दौरान थे तो क्या हालात है, मैं आपको सुनाऊंगी जब कभी उस मौका आएगा, उस बात पे हदीस पढ़ेंगे तो वहां तो हम पूरा उनके हालात पढ़ाते हैं। पूरे अपने बदन के कपड़े बेच दिए थे इन्होंने, यहां तक हालात हो गए थे। आम बात थी कि आयमाए कराम और ये मुहद्दसीन और जिनके हम बातें पढ़ते हैं ना, इनके माएँ घर बेच देती थी और वो पैसा रख लेती थी और कहती थी कि इससे अपने बच्चे की तरबियत करेंगे। किसी ने अपने सेवर बेच दिए, किसी ने कुछ कर दिए। ये दीन इस तरह था, कहते हैं कि 2-3 दिन तक ये क्लास में ना जा सके, तो उस्ताद ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि कपड़े ही पास नहीं है कि जो जिस्म पे लेके आके कर सको। इमाम मुस्लिम की कहानियां पढ़ ले, मैंने एक पूरे लेक्चर में पता नहीं 10-15 लोगों के रेफरेंसेस के साथ पढ़ के सुनाई हुई है, कभी आपकी नज़र से गुजरे तो ज़रूर सुने। क्या इखलास था, क्या कुर्बानियाँ थी, क्या तड़प थी, कि आज सदियाँ गुजर गई हैं लेकिन उस किताब को कोई पीछे नहीं डाल सका। मुसलमानों की कोई स्कूल ऑफ थॉट हो, कोई फिका है, हनफी, जाफरी, कोई भी है, इमाम बुखारी की किताब लिए बगैर कोई छोड़ नहीं सकता। ये इखलास होता है। इतनी शोहरत क्यों मिली, अल्लाह ने इतना कबूल क्यों कर लिया उनको? तो याद रखिए कि अल्लाह ताला कहता है तुम जिन चीजों के लिए जोड़ रहे हो ना, वो काम नहीं आनी। ला बयुन फी, ऐसे लग रहे इस आयत को पढ़ के कि जैसे एक वैलिड चेक है। आज की डेट देख लें, आप सोचे कि आपको कोई एक चेक मिले और आज शाम तक की उसकी डेट लाइन है, आपकी क्या ख्वाहिश होगी? आज ही इसको कैश करा दो। कोई छोड़े चेक तो बड़ी दूर की बात है, एक वाउचर, कोई आपको ग्रोसरी स्टोर से कुछ मिला हो कि ये इस डेट से इस डेट के बीच में यूज कर ले। आज जाएंगे तो हो सकता है हजारों का हो, कल जाएंगे तो वो कागज का टुकड़ा है। ये है ला बयुन फी। इसी दौलत को ले लेके बंदा कयामत के दिन फिर रहा होगा, काश मैं इससे कुछ ले लूं। हदीस में आता है कि कयामत के करीब जमीन में से सोना निकलेगा, ढेर लगे होंगे। बाहर आप जाएंगे ना, जैसे ये रोड्स पे कहीं बर्फ गिरी हुई होगी या कुछ ऐसे ना, तो सोने के ढेर होंगे। और उसके पास से चोर गुजरेगा जिसका हाथ कटा हुआ है चोरी की वजह से, तो वो उस खजाने को देखे गएगा, काश मुझे पता होता कि इतना खजाना आने वाला है तो मैं इतनी जल्दी ना करता तुझे लेने के लिए, इतना सोना आएगा। ला बयुन फी। और उस दिन ट्रेडिंग और भी तो बहुत सारी होगी ना, जिसमें लोग अपने माँ बाप, अपने बच्चों, बीवी, बेटों को देंगे कि अल्लाह इनको ले ले और मुझे इसकी जगह पे छोड़ दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि आओ तुम देखो ये कैसी चीज है। और इंसान अपनी तबीयत के एतबार से माइंड करता है, जब उसको कोई कहता है ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, चाहे मस्जिद वाला बेचारा टूटी मस्जिद में खड़ा हुआ है, वो कह दे कि देखो लोगों, छत रात को पानी की वजह से बह रही थी, कुछ कर दो, तो बुरा ही लगेगा। और कोई ऐलान कर दे जुम्मे के बाद आज बाहर बिरयानी की देख फ्री है, सब खा लें, तो हम कहेंगे दो दो प्लेटें भी ले जाएं। क्यों आज हमारी मस्जिदें रोती हैं, कभी आपने सोचा? मेरी तबीयत ही अजीब सी हो गई है कि यकीन करें, 2 दिन पहले मैं ईशा की नमाज में जब थी, आमतौर पर हम शुरू के रूम में पढ़ते हैं, उस दिन अंदर सिस्टर्स खड़ी थी तो मैं भी उनके साथ अंदर चली गई। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और अल्लाह ना करे कि मुझे इस जगह पे बैठ के अल्लाह झूठ की तौफीक दे, नमाज के बाद जब बैठ के जिक्र अस्कार करते हैं तो सामने ही नजर जाती है ना, तो मैंने यू देखना शुरू किया। आप में से मेरी बात को तस्दीक करने के लिए अभी भी कोई जाके देख ले, एक फिरोजी रंग की कुर्सी, एक ब्राउन, एक काली, एक इस तरह टूटी फूटी। मैंने अपनी आंखों के सामने सिर्फ इतने से दायरे के अंदर 7-8 किस्म की मुख्तलिफ कुर्सियां देखी जो खस्ता हाल थी। क्यों पड़ी है मस्जिद में? आपके मेरे घर में हैं ऐसी कुर्सियां? कोई हमारे घरों में ऐसी कोई चीज छोड़ के जा सकता है कि ये रख लो? اور وہ قرآن رو رہے ہوتے ہیں, یقین کریں, جب موقع مجھے ملتا ہے. اور وہ عورت, وہ کہتی میں روز ٹھیک کرتی ہوں, لیکن جب بچے شام کو پڑھنے آتے ہیں وہ یوں پکڑ کے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. سات رنگ کی کوئی کسی کی گمی پڑی چیز آپ جا کے دیکھیں آپ کو مل جائے گی, ٹکڑے جوڑ جوڑ کے کارپیٹ ہمارے جڑے ہوئے ہیں. کیوں, ہم غریب لوگ ہیں کیا؟ ہم میں سے کسی کا بھی ایسا نہیں گھر ہوگا, لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ خیال نہیں آتا. پھر ہم شک ڈال دیتے ہیں, مسجدوں والے ٹھیک نہیں لگاتے, یہ کھا جاتے ہیں, وہ پی جاتے ہیں. آپ خود آئیے اندر, آپ کریے مسجدوں کو ٹھیک, کیا بڑی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں پھر لوگ بھی اس طرح ہوں گے, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی, یہ پوری دنیا کے اندر حالات ہیں. یہ تو اب باہر کے ملکوں کی مسجدیں اللہ نے پیسہ بھی دیا اور ایڈ بھی بڑی مل جاتی ہے اور کچھ بھی ہے, ورنہ ہمارے اپنے ملکوں کی مسجدیں تو روتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو کہ دیا کس نے تم کو, اور اگر دینے کو دل نہیں چاہتا تو سوچو وہ دن آنے والا ہے. بلا خلا, چلو بھائی ان کو تو سمجھ لیا کہ اس دن تم پیش کرو گے لے لو, نہیں لیا جائے گا. یہ دوستیوں کی باتیں یہاں کیوں آ گئیں؟ کیونکہ دنیا میں جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, دل میں آ جاتا ہے دوست تمہارے کام آئیں گے. کہا اس دن تمہارے دلی دوستوں میں بھی کام نہیں آنا. اس لیے آج فکر کرو, جو کچھ مجھے اور آپ کو دیا اللہ نے ہماری ضرورتوں کے لیے دیا, اور ضرورت کے بعد اس لیے نہ کہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ, بلکہ اس لیے کہ جب کبھی اللہ کو ضرورت پڑے تو بسم اللہ پڑھ کے دو, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مانگا. وہ یاد کر لیجئے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. دہدا کوئی کم سمجھدار نہیں تھے, انہوں نے سودا کیا, سیو ہو گئی. دیکھیے سمپل سی بات ہے, اس پہ کر کے ہم آگے چلیں گے, کہ ہم سب اپنا پیسہ بینکوں میں رکھتے ہیں یا چیکس کی صورت میں کوئی بھی رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کیا ہمیں بینک والے بڑے اچھے لگتے ہیں؟ اور کیا خیال ہے آپ نے جو پچھلے ایک سال سے کچھ ہزار بینک میں رکھے, انہوں نے رکھے ہوئے ادھر, وہ خرچ کر رہے ہیں. آپ جب جائیں گے وہ سیکیورٹی دے دیتے ہیں کہ جب آئیں گے آپ کو مل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ سنڈے کو جائیں, پتہ چلے بینک بند ہے, اے ٹی ایم مشین کام نہیں کر رہی, منڈے کا ویٹ کرنا پڑے. ہو سکتا ہے نا, آپ لینے کے پتہ چلا مشینیں اس وقت خراب تھی. بندہ اس یقین پہ بینک کو دیتا ہے کہ جب جاؤں گا واپس مل جائے گا, تو کیا اللہ پہ اتنا بھی یقین نہیں؟ سوچنے کی بات ہے. وہ تو ہو سکتا ہے رات کے وقت بند ہو جائے, سنڈے کو بند ہو جائے, اللہ کی ذات تو لا تاخذہ سیدھا تم ولانا, تم اپنا دیا ہوا میرے سے لینے آؤ, میں سوتے میں تمہیں دے جاؤں گا, تم کیا فکر کرتے ہو. یہ یقین بندے سے کام کراتا ہے. اور سفارش کی بھی بات ہے, بہت سارے لوگ جو آخرت کے بارے میں بے خوف ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں ہمارے کام آئے گا, اس لیے اللہ نے یہاں سفارش کی بات کی. اور آخری لفظ دیکھیے, ول کافرون. میں آپ سے پوچھوں گی, یہاں کافرون سے کون لوگ مراد ہے؟ ہم نے ایک ہی لفظ سنا ہوا ہے, کافر, ڈس بلیور, نان مسلم, مشرق, فلاں فلاں. یہاں کافر اللہ کے راستے میں مال کے کفر والے کو کہا گیا, جو اس حقیقت کے منکر ہیں کہ اللہ کا دیا اللہ کے رستے میں لگے گا تو برکت آئے گی زندگیوں میں. اللہ کہتے ہیں وہ ظالم ہونا ہے. کیسے ظالم ہے؟ اور اگر نہ دل چاہے تو پھر اگلی آیت پڑھ لو. اس سے اگلی آیت کا اس کا ربط یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دینے سے دل گھٹے تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ کون سی کمپنی ہے یا کون سا برانڈ نیم ہے جو تم سے مانگ رہا ہے. تمہیں انویسٹمنٹ کے لیے مانگ رہا ہے, تم سے قرض نہیں مانگ رہا. تو اس کے بعد آیت الکرسی اکانا, اصل میں بیچ میں صرف ایک آیت آئے گی, آپ دیکھیں گے آگے پھر کچھ آیتوں کے بعد منی میٹرز شروع ہو جائیں گے. اور آپ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں, یہ آگے جا کے بہت دفعہ آپ کے آگے آئے گی کہ اللہ نے کس طریقے سے مال خرچ کرنے کی بات دی. لا بین فیہ ولا خلۃ ولا شفا. جس دن کے لیے تم سنبھال کے رکھتے ہو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر دو, ایسا نہ ہو کہ جب تم خرچ کرنا چاہو تو کچھ قبول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر آئے گا اور عذاب کی جب اس کو خبر ملے گی تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اگر آج تجھے اس عذاب کے بدلے میں کچھ چھوڑنے کے لیے دینا پڑے تو دینے کو تیار ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ, میں تو سب کچھ دینے کو تیار ہوں. کہا اچھا, اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا تو وہ سونا دینے کو تیار ہے اللہ کے راستے میں؟ تو وہ کہے گا جی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, میں نے تو تجھ سے اس سے بہت تھوڑا مانگا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بدل دے. اور حقیقت میں خرچ انہی جگہوں پہ لگتا ہے جہاں دل ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے کیونکہ ان کا دل اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہم ضائع کریں. کچھ کپڑوں پہ لگا لیتے ہیں, کھانے پہ نہیں لگاتے, کچھ زیور پہ لگاتے ہیں, کچھ نہیں. تو جہاں بھی ہم خرچ کرتے ہیں نا وہاں ہمارا دل پڑا ہوتا ہے. جس دن دین پہ دل پڑ جائے گا اس دن دین کا خرچ بندے کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون